यहाँ अगली आयतें सारी जो आ रही हैं उसके ऊपर बात करने से पहले ये भी आपको बता दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो मक्का वालों ने एतराज़ात किए थे ना, तो उसमें एक एतराज़ ये भी था कि अल्लाह के नबी सल्लम के पास दुनिया की दौलत क्यों नहीं, या बज़ाहर ये ऐसे क्यों लगते हैं, ये इतने गरीब गरीब क्यों हैं, या इनकी अपनी ज़ात पे पैसा क्यों नहीं लगता, ये ऐसे क्यों हैं। अगर ये सच्चे नबी होते तो फिर अल्लाह ताला इनको पहले सबसे ज़्यादा देता, क्योंकि वो क्यास करते थे दुनियावी बादशाहों के एम्बेसडर्स पे कि किसी मुल्क का अगर बादशाह भी किसी को कासिद बना के भेजता था तो उसके ऊपर भी रेशमी जुब्बे पड़े होते थे। तो अगली आयतों में अब अल्लाह ताला अपनी इस बादशाही की झलकियाँ दिखा रहे हैं कि मत सोचो कि ये नबी कोई किसी गरीब बादशाह का भेजा हुआ है, उसके हाथ में बहुत है। और यहाँ से आगे हम अपना नज़रिया भी दुरुस्त करेंगे जो आज के दौर में इस्लाम के बारे में लोगों के दिलों में आ गया कि इस्लाम गरीब मस्कीन भूखा और रोया धोया इस्लाम। अल्लाह ताला ऐसा कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी आते हैं, अगर वो दुआ करें तो बड़ी बड़ी जायदादें बनवा लें, लेकिन ना तो वो बड़ी जायदादें बनवाने आते हैं ना बर्तरी के दावे करते हैं, वो तो लोगों को अल्लाह से जोड़ते हैं। और जो अल्लाह से जुड़ जाएगा उसकी तो सारी कायनात बन जाएगी। क्या कुछ किया उस अल्लाह ने, आयत नंबर 3 से आगे, खलकत समावाति वल अर्द बिल हक, उसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को हक के साथ, बेकार नहीं पैदा किया। अब बिल हक पे पीछे भी बात 2-3 दफ़ा हो गई, यहाँ फिर कर लीजिए। पहली बात है कि बहुत अच्छी तरह बनाया, आसमान को जैसा होना चाहिए था वैसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी दूरी पे होना चाहिए उतना ही है, जितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए उतनी है, और इस पे हम बात कर चुके हैं पीछे कि सिर्फ डिस्टेंस कम कर दिया जाए तो ज़मीन सारी जल जाए सूरज जितना गर्म है, और सूरज को इससे ज़रा और दूर कर दिया जाए तो सब कुछ जम जाए। इस पे तुम्हारा दिल चाहता है कि एक अलग से पूरा लेक्चर रखें हम, कुछ आपको प्रेजेंटेशंस के साथ दिखाएं कि इस कायनात की हर चीज़ वहाँ है जहाँ उसको होना चाहिए। इस पे हम सूरह हिजर में बात कर चुके हैं, सब कुछ हक के साथ पैदा किया, जैसा जो होना चाहिए वैसा ही है। दूसरा मानी बिल हक का क्या है कि मकसद के साथ पैदा किया गया। एक एक चीज़ कारामद है, किसी जगह ऐसा हुआ कि उन्होंने एक ख़ास कीड़ा था उसको मार दिया, तो जूँ ही वो मारा तो वहाँ देखा कि गालिबन मेंढक बहुत हो गए, पता चला कि ये क्यों हो गए, क्योंकि वो जो जानवर जो उन्होंने ख़त्म किया वो मेंढकों को खाता था। ये पूरा एक सिस्टम है, आपने अगर साइंस पढ़ी है, हर बड़ी चीज़ छोटी को खा रही है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, फिर छोटी मछली उससे छोटे को खाती है, फिर कीड़ों तक बात आती है। इतना प्यारा अंदाज है, अगर हर पैदा होने वाला सांप का बच्चा इस ज़मीन पे आ जाए तो इस दुनिया पे चलना मुश्किल हो जाए, इतने सांप हैं। इसलिए सांप की जो फीमेल अंडे देती है तो उसमें से 98% अंडे खुद पी जाती है और सिर्फ 2% सांप बनते हैं। दीमक अगर जितने मिलियंस अंडे एक सेकंड में उसकी फीमेल देती है, अगर सारे ज़मीन पे फैला दिए जाएँ तो ज़मीन सारी की सारी दीमक से भर जाए। ये सब उसने किया हुआ है, उसको पता है कैसा होना चाहिए। तो जब उसने सबको इस लिए पैदा किया तो फिर क्या तुम सोच सकते हो कि इंसान बेमकसद है, ऐसे ही खाए पिए चरे चुगे चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तआला अम्मा युश्रिकून, वो बरतर है उससे जो वो शिर्क कर रहे हैं, हर चीज़ उसी के हाथ में है। सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं कि या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि जिसने इतना प्यारा जहान बनाया है फिर वही इस काबिल है कि उसकी इबादत की जाए। और ताला किस चीज़ से बुलंद है, हर बुत से, हर सनम से, हर वसन से बाला। खालिक और मखलूक बराबर नहीं होती, तुम कब्र में सोए हुए एक शख्स को अल्लाह के बराबर कर देते हो, ये कैसे हो सकता है। वो तो सारी चीज़ों से पाक है, उसने इंसानों को ये सब कुछ देकर एक बहुत बड़ा मकसद उसको दे दिया। फिर एक और बिलहक से बात पता चलती है कि पूरी कायनात में वहदत है, जिसको आप कह सकते हैं तसलसल है। एक ज़ात जब हुक्म देती है ना किसी जगह तो काम सही चलते हैं, और दो लोग हुक्म दें ना तो आप देखें कि बेगम कोई बात कह दे कि जाओ ये दूध ले आओ, तो साहब जो है वो कह दें कि ये गाड़ी ठीक करा लो, तो वो मुलाजिम हमेशा दुखी होगा। फिर उसके बाद इंसान की तख्लीक की तरफ तवज्जो दिलाई गई, खलक अल इंसान मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुन मुबीन, उसने पैदा फरमाया इंसान को नुतफे से, बस अब वो बरमला झगड़ालू बन गया है। इंसान को उसकी औकात याद दिलाई गई और नुतफा पहला मरहला होता है बच्चे की तख्ली का, जिसको जाइगोट कहते हैं आज साइंस की ज़ुबान में, कि मर्द और औरत का पानी जब मिला तो उसके बाद जो पहली सूरत बनी वो नुतफे की है। फिर उसके बाद ये सब कुछ बनता जाता है। कहा इंसान कभी सोच तू बना कैसे, कहाँ से बना, क्या तेरी ताकत है। सूरत तारक में आता है फलयंजुर इंसान मिम्मा खुलिक, इंसान को चाहिए कभी देखे तो सही कि बना किस चीज़ से है, अकड़ता कितना है, बड़ा कितना बनता है, लेकिन हाल देखो इसका कि इसके पास है क्या चीज़। वो इंसान जिसको अल्लाह ने इतना हुसन दिया, इतना कमाल दिया कि चांद सूरज उसके आगे मान पड़ते हुए दिखते हैं, फूल उसके सामने खुशबू बखेरते हुए दिखते हैं, इंसान की हैबत से जंगल के जानवर भागने लगे, वो इंसान जो सितारों पे कमंदे डाले, कभी सोचो तो सही पैदा कहाँ से हुआ, एक पानी की बूंद से। कभी दुनिया में कोई पानी से तस्वीर बना सका, और इतनी प्यारी तस्वीर। सूरत मुरसलात आयत 20 में भी आता है अलम नखलुक्कुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुमको हकीर पानी से पैदा नहीं किया। सूरत मरियम आयत 66 से 67 में आता है अवला यस्कुरुल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन क़ब्ल वलम यकु शैया, क्या इंसान गौर नहीं करता, नसीहत नहीं लेता कि हमने उसको पैदा किया जबकि इससे पहले वो कुछ भी नहीं था। और रिवायात में आता है कि उमैया बिन खल्फ कहीं से गुज़रा, पुरानी कब्र थी, पुरानी हड्डी उठा के ले आया, अल्लाह के नबी को दिखाने लगा, कहने लगा मैं युखजिल इज़ाम वही रमीम, कौन इस हड्डी को जोड़ेगा दोबारा पैदा करेगा जबकि ये गल चुकी है। तो उस पर सूरह यासीन की आयत 77 उतरी थी कि वही इसको पैदा करेगा जिसने इसको पहली दफ़ा पैदा किया था। तो अगर इंसान गौर करे तो उसके लिए अपनी तख्लीक में बहुत सारा सबक है। और देखो बना किस चीज़ से, और पैदा होते ही झगड़े करने लगता है, ये भी एक इंसान की मजबूरी है। आप देखिए बच्चे को जूँ ही ज़ुबान मिलती है लड़ने लगते हैं। मैं कभी किसी बच्चों वाले की गाड़ी में बैठ जाऊँ ना, आधा वक्त बच्चे लड़ रहे होते हैं, इसने ये किया उसने ये किया। मैं उस वक्त सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि माँ को तो बहुत ज़्यादा अदल और इंसाफ वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर माँ हर वक्त काजी बनी होती है, बेचारी साथ ड्राइव कर रही होती हैं, साथ इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं, लड़ते लड़ते दो बच्चों को बिठा दें, बोलेंगे भी नहीं फिर भी लड़ेंगे। वे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो आप देखिए उससे पहला बच्चा जाएगा उसका मुंह नोचाएगा, हाँ है ही झगड़ालू, खसम से खिसाम झगड़े करता है, और बड़ा होता है तो फिर तो अल्लाह के साथ भी झगड़ने लगता है। ठीक है आप करिए सबसे झगड़ा, लेकिन पैदा करने वाले से तो झगड़ा ना करें। असल में यहाँ उसी झगड़े की बात है कि अल्लाह के सामने भी ज़ुबान चलाता है, इतना बोलता है बना कहाँ से आया, और जब बड़ा होता है तो अल्लाह के साथ शरीक बनाता है। तो यहाँ झगड़े से मुराद फिर शिर्क भी है कि अल्लाह ने इतना कुछ दिया लेकिन इसके बावजूद भी ना शुक्रिया करता है और दूसरों को अल्लाह ताला के साथ जोड़ने लगता है। फिर इंसान की तख्लीक की बात हुई और उसके बाद अब छुपाइयों की तरफ लेके जाया जा रहा है। आप इमेजिन करें आप किसी जगह टूर पे गए हुए हैं और आपको गाड़ी में बिठा के पहले एक जगह दिखाई जा रही है कि यहाँ देख लो ये काम करो और दूसरी तरफ दूसरे को करो। और लफ्ज़ हसीन जो है ना खसम से, ये नोट कर लीजिए, खास वाद मीम इसका रूट है, फ़ाइल का सख्त झगड़ा लो। हसीन के लफ्ज़ में ना कंटिन्यूटी है, बस इतना याद रख ले, अगर बाप फ़ाइल में कोई चीज़ होती है तो तसलसल होती है, यानी सख्त झगड़ालू है, हर लम्हे एक से फारिग होता है तो दूसरे से काम शुरू कर देता है लड़ने वाला। वलनाम खलकहा लकुम फी खद्दिफुम वमनाफियो वमिन्हा ताकुलून, और उसने जानवरों को पैदा किया तुम्हारे लिए, इनमें गर्म लिबास भी है और दीगर फ़ायदे हैं, और इन्हीं का गोश्त तुम खाते हो, और सिर्फ गोश्त ही खाते हो या फ़ायदे नहीं। वलकुम फी हज्जमाल ही न तुरीहू न वही न तसरखून, और तुम्हारे लिए इनमें जेबो जीनत भी है, खूबसूरती भी है, जब तुम शाम को चरा कर इन्हें घर लाते हो और जब सुबह को निकल जाते हो, बस इतना ही है नहीं। वतहमिलु अस्कालकुम इला बलदिल लम तकूनु बालिगीही इल्ला बिशक्किल अनफुस, और ये जानवर उठाते हैं तुम्हारे बोझ इन शहरों तक जहाँ तक तुम नहीं पहुँच सकते थे, हाँ मगर सख्त मुशक्क़त से। ये सब क्यों हुआ, इन रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब बहुत मेहरबान اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جانوروں کی بات پوری ہوتی ہے، اگلی آیت پہ والخیل والبغال والحمیر، اور اس نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے۔ کیوں پیدا کیے؟ لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینتن، اور تمہارے لیے ان میں زینت بھی ہے، ویخلق ما لا تعلمون، اور پیدا فرمائے گا ایسی سواریاں جن کو تم جانتے ہی نہیں، یعنی گاڑیاں، جہاز، ہیلی کاپٹرز۔ اب یہاں پہ جو بات پوری ہوتی ہے جانوروں کے فوائد کی، ان پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ انعام نعم سے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، چوپائے اونٹ کو کہتے ہیں اصل میں، لیکن کیٹلز کے معنوں میں سارے ہی چوپائے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان کے فوائد بتائے گئے، پہلا بتایا گا دفن۔ دف کا لفظ جو ہے نا، اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ کریں گے، دال فا حمزہ اس کا روٹ ہوتا ہے، گرم رکھنے کا سامان۔ ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا سینٹرل ہیٹنگ، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ آتا ہے تدفیہ، تدفیہ۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ اس بلڈنگ میں کیا تدفیہ ہے، تو مراد کیا ہے کہ کیا یہ سینٹرلی ہیٹڈ ہے۔ وولن چیزیں، سردیوں میں پہننے والے کپڑوں کو کہتے ہیں، مثلا لیدر جیکٹس کی طرف اشارہ ہے، پیور وول کے جو کپڑے ہیں۔ کہ کبھی سوچا ان جانوروں کے اوپر کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا؟ آپ کبھی سوچیں تو صحیح، اتنا پتلا سا بھی کپڑا ہوگا لیکن پہنتے ہی آپ کو گرمی لگنے لگے گی، یہ ان چوپائیں اور ان جانوروں کی کھال کا۔ آج دیکھیے سنتھیٹک چیزیں کس عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ملکوں سے ویسٹرن کنٹریز کنٹینرز کے کنٹینرز لیدر جیکٹس کے منگواتے، لیدر کے گلوز کے، ان کی ساکس کے۔ اللہ نے غریبوں کی بھی دیکھے سنی بھی ہے، ایک بہت بڑا حصہ اس وقت پاکستان کی جو امپورٹ ایکسپورٹ کا ہے اس میں لیدر کی چیزوں کا ہے، کیونکہ سردی ادھر زیادہ ہے، جانور ادھر زیادہ ہے۔ آپ امیجن کریں، جتنے سرد علاقے ہوتے ہیں وہاں اتنے جانور ہوتے نہیں۔ ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیں، آپ کو سڑکوں پہ بھی گائے بھینسیں دکھیں گی، یہاں آپ نے کبھی شاید دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیسے دو کی ضرورت کو جوڑ دیا کہ پیدا وہاں ہوں گے اور استعمال یہاں ہوں گے، یہ اللہ کا نظام ہے نا۔ جیسے بچی پیدا گھر میں ہوتی ہے، شادی کر کے کوئی اور اس کو لے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے سے لوگوں کے سامان کا استعمال کیا۔ تو پہلا فائدہ پھر جانوروں کا نوٹ کر لیں ان ساری آیتوں میں سے، کہ وہ ہمارے گرم لباس بناتے ہیں۔ اسی سے پھر میں سوچتی ہوں کہ ان کو ٹھنڈ نہیں لگتی۔ آپ سوچیں نا کہ جانور باہر پھرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کو ٹھنڈ نہیں لگتی، کبھی آپ پینگوئنز کو دیکھیے برف پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں اتنی موٹی موٹی تو ان کی تہہ ہوتی ہے، آپ جوتوں کے اندر ان کی فر لگواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتی نظام کیا ہوا ہے۔ دوسرا ان کا فائدہ ہے وہ منافیو، اس کو آرام سے رکھ دیا یعنی کیجول کر دیا، منفع کی جمع یہ، نون فا عین اس کا روٹ ہوتا ہے۔ مثلا کیا منافع ہیں؟ دودھ لیتے ہیں ان سے، گوشت کھاتے ہیں، سواری ان کی ہے، ہاں جتنے ہمارے کھانے ہیں ڈیری فوڈ ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ساری دنیا کی بھینسیں اور گائیں ہڑتال کر دیں، سرکش ہو جائیں، ہم دودھ نہیں دیں گے، آپ دودھ نکالنے گئے تو نکلا پانی، خون نکلا، کیا ہوگا؟ امیجن کریں ذرا آپ کے گھر میں سے کیا کیا چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ورلڈلی پوری دنیا کی گاؤں کو اللہ تعالیٰ روک لے، آپ کا دودھ، آپ کا چیز، آپ کا یوگرٹ، آپ کے چاکلیٹس، آپ کے سیریلس، آپ تو ناشتہ ہی نہیں بنا سکتے۔ صرف ایک دودھ کی بوٹل گھر میں نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں جی ناشتہ ہی نہیں بن سکتا، چائے کیسے بنائیں؟ اور یہ صرف ایک مخلوق کی تابے داری کا فائدہ ساری دنیا اٹھاتی ہے، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ایک مخلوق جب سرکشی کرے گی تو اتنے بھوکے رہ جائیں گے، تو جب ایک انسان جو اشرف المخلوقات میں سے وہ سرکشی کرتا ہے، وہ اپنے حصے کا کام نہیں کرتا، تو پھر آپ سوچئے کہ دنیا میں کتنا نقصان ہوگا۔ اصل میں یہ فیکٹریاں جو زمین پہ پھر رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ ایک فیکٹری ہم بھی لگاتے ہیں، اتنی بھدی، کبھی آپ جا کے دیکھیں پلانٹس ہوتے ہیں، جیسے چلے پیسچرائزنگ کا پلانٹ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ملک پیک کرنے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں، آپ پاس سے گزریں آپ کو بو آئے گی۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ دودھ کو خوب پکاتے ہیں، اور جب ایک خاص ٹیمپریچر پہ آتا ہے، کنڈینس ہو جاتا ہے، تو جلدی سے ٹیٹرا پیک میں ڈال کے سیل کرتے ہیں، صرف اتنا سا کام ہے۔ کہیں آپ کو بڑا سا کنٹینر دکھے گا، کہیں لمبی لمبی چمنی ہے، کہیں ہیٹنگ ہے، کیا ہے جی کہ یہ دودھ پیک ہو رہا ہے۔ کتنی بھدی لگتی ہیں فیکٹریاں، کبھی آپ کسی مل ایریے میں گزرے ہوں، کسی فیکٹریوں کے پاس سے گزرے ہیں، ہمیشہ بو آئے گی۔ लेदर की फैक्ट्री के पास जाएं, नाक नहीं रखा जाता। पोल्ट्री फार्म जहां लोग सिर्फ उन चीज़ों को सेटल डाउन कर रहे होते हैं, वहां से गुजरा नहीं जाता। कभी आप ऑयल रिफाइनरीज के पास जाएं तो धुआं पोल्यूशन, और इसके बरक्स अल्लाह की इस कायनात को देखिए। ये बकरी क्या है? छोटी फैक्ट्री है। गाय क्या? उससे बड़ी फैक्ट्री है। अल्लाह कहते हैं सिर्फ ये तुम्हारे मुनाफे और खाने पीने की चीज़ों को नहीं करे, खाते भी हो। वलकुम फीहा जमालुन, खूबसूरत कितनी है। अल्लाह की कायनात में जो आपको चीज़ मिलेगी ना, वो और इंसान की बनाई हुई चीज़ों का साथ ही फ़र्क महसूस कर लें। हम इंसान दो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। हमारे घरों में दो तरह का सामान होता है। नंबर एक, इफ़ेक्टिव यूज़ वाला, मतलब वैक्यूम क्लीनर आपको ज़रूरत है, इस्त्री ज़रूरत है, हीटर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कमाल है इनमें, कुछ काम है ना, स्टोव ओवन चूल्हा पतीला। इसके बरक्स हमारे घरों में एक दूसरी तरह की चीज़ें होती हैं, डेकोरेशन पीसेस, क्रिस्टल। इनमें क्या है, जमाल। इंसान काम करता है तो कमाल वाली चीज़ें अलग हैं और जमाल वाली अलग हैं। बस आपके कि फ्रिज की पतली कमर हो तो फ्रिज से आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, आपको सीधा मोटा सा एक डब्बा सा बनाना ही पड़ेगा जिसमें ज़रूरत के मुताबिक खाने खुने डाल देंगे, क्योंकि उसका कमाल आपके सामने है। अब आपको कोई सजाना है तो बेल फूलों की, कुछ भी, कोई क्रिस्टल की बनानी है तो वो बड़ी नाजुक होगी। अल्लाह की तख्लीक में कमाल क्या है कि कमाल और जमाल एक ही साथ है। ज़रूरत नहीं कि कायनात की ये चीज़ें, ये सिर्फ जमाल के लिए हैं, देख के खुश हो। खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ कायनात की क्या होगी, फूल देख ले। मैं कहती हूँ किसी ने अगर मिजाज देखना है ना अल्लाह का, तो फूलों को देख ले, पत्तियों को देख ले, कितना जमाल है। तो क्या फूल सिर्फ जमाल के लिए हैं? क्या इस कायनात में सिर्फ वो एक डेकोरेशन पीस बने हुए? आप देखिए उससे कितने फ़ायदे, कितने कीड़ों मकोड़ों को वो की रोज़ी रोटी उससे चली हुई है, फिज़ा को ऑक्सीजन देते हैं, खुशबू देते हैं। बकरी को देख ले, उसमें कभी आपने देखी हो छोटी छोटी बकरियाँ, और ख़ास तौर पर जो सफ़ेद ऊनी किस्म की उनकी फ़र होती है, इतनी प्यारी लगती हैं, दिल करता है कि प्यार करें उनको, गले मिल लें। कब एक दफ़ा मैंने ट्रैवलिंग की कहीं, तो ट्रेन पे थी मैं, तो जहाँ से ट्रेन गुजरे नीचे सब्ज़ घास, आज भी मेरे लाशौर में वो मंजर दबा हुआ है, सब्ज़ के कई शेड थे और उसके ऊपर वाइट कलर की बकरियाँ, छोटे छोटे कद की, और बस मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वहाँ से हटूँ, मेरा था कि ट्रेन रुके और मैं वहाँ जाके इनसे बातें करूँ। सफ़ेद छोटी छोटी दौड़ रही हैं, चल रही हैं। फिर अब देखिए हम इंसान जो चीज़ें बनाते हैं उनको हम चलाते हैं, खुद वैक्यूम चलने लगे तो हम डर जाए हैं। अल्लाह की ये फैक्ट्रियाँ मूविंग है। आज मोबाइल चीज़ों का बड़ा रिवाज है ना, मोबाइल फ़ोन है, हम खुद उठा उठा के फिर रहे होते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी पानी में गिर जाता है, कभी कुछ होता है। अल्लाह की ये कायनात, खुद हमारे पास उसकी चीज़ें आ जाती हैं, फिर उनमें जज्बात है, उसमें क्या कुछ है। अल्लाह कहते हैं लोगों में जमाल का मुखालिफ नहीं हो। यहाँ से आपको अब वो मिजाज भी समझना है कि क्या इस्लाम खूबसूरती को पसंद नहीं करता। हम लोगों ने इस्लाम को बड़ा ही भद्दा बना दिया, माजरत के साथ। हमारे जहनों में क्या है कि इस्लाम का तो खूबसूरती से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। तकवा क्या है कि आपको किसी चीज़ की होश नहीं। आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ डिसॉल्व हो रहा है, ये खारजियों से शुरू हुआ था, सहाबे कराम के दौर से लेकर ख़वारिज के दुनिया में आने तक इस्लाम लोगों के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ थी। कभी ये सवाल उठे ही नहीं थे लोगों के लिए जो आज उठे हैं, कि अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, कभी सहाबा के जहनों में नहीं आया। हाँ, हमें जितनी हदीसें मिलती हैं, जितनी बातें हैं कि दुनिया की बेरगबती की, ये दो तरह से है। नंबर एक, इस्लाम की इब्तदाई दिन थे जब मुसलमानों में से एक एक पैनी की ज़रूरत थी इस्लाम को, इंसान भी थोड़े थे, वसाइल भी थोड़े थे, इसलिए बाद जगह इस चीज़ को बुरा समझा गया कि एक सहाबी ने अगर अच्छा घर बना लिया, बड़ा बना लिया ज़रूरत से ज़ायद, तो कहा कि अच्छा एक तरफ तो इस्लाम को लिए घर की इतनी ज़रूरत है और तुम अपना घर डबल स्टोरी कर रहे हो, ऐसी चीज़ें। दूसरी चीज़ समझ लीजिए कि ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके। मैं चाहूँगी कि आखिर सूरत तक जो बात होनी है वो यहीं कर दूँ ताकि आप एक कॉन्सेप्ट समझ के आगे चलें, और वो क्या है कि इस्लाम किसी चीज़ को खूबसूरत करने से, अच्छा रहने से मना नहीं करता, बल्कि अल्लाह का तो अपना नाम जमील है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, यहाँ भी वही लफ्ज़ है, बेशक अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। صحابی نے آ کے کہا اللہ کے نبی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میری جوتی اچھی ہو، خوبصورت ہو، میرا تسمہ اچھا ہو، تو کیا یہ کبر ہے، تکبر ہے، پراؤڈ ہوں میں؟ کہا نہیں، یہ کس نے کہا تمہیں؟ کبر کیا ہے؟ بتر الحق کی وغمت الناس، دو چیزیں دیکھ لو، کہ ایک تو یہ ہے کہ حق سامنے آئے، اللہ کا حکم آ جائے اور ٹھکرا دو، کہ نہیں میں نے تو اتنا خوبصورت لگنا ہے کہ یہ لباس حجاب کے تقاضے نہیں بھی پورا کرا، میں تو یہ پہن کے جاؤں گا، حدوں کو نہ پامال کرو، اور دوسرا یہ کہ اچھے کپڑے پہن کے کسی کو سلام بھی نہ کرو کہ جی میں تو بہت بڑے گھر سے آئی ہوں اور یہ چھوٹے گھر کی ہے، دوسروں کو حقیر نہ جانو، اللہ کے حکموں کو مانو، اس کے بعد ہر چیز خوبصورت ہے، جتنی یہ کائنات خوبصورت ہے آپ دیکھیے، اس سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ کو خوبصورتی اچھی لگتی ہوگی؟ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ دین کے نام پہ جو دین عام کیا گیا اس کو دیکھ کر تو ویسے ہی لوگ دور بھاگ جاتے ہیں، الحق کو مر، حق تو کڑوا ہوتا ہے، ماننا پڑے گا، لیکن جب آپ اس کو بے ڈھنگے طریقے سے پیش کریں، پھٹی ہوئی دریاں، لوگ فلم دیکھنے جائیں، وہاں سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہو، وہاں کرسیاں ذرا فارم والی ہوں، وہاں کا ماحول بڑا خوشبو والا ہو، اور وہی لوگ جب قرآن پڑھنے آئے اور اگر وہ سب کچھ کوئی کر دے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا دین ہے، اس اسراف کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں تو اسی سوچ نے آج اسلام کے اندر رہبانیت کی رمک ڈال دی، قطعاً اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، نہ آپ کسی کے تقوی کو اس سے پہچان سکتے ہیں، کوئی شخص کنگھی نہ کرے، شلوار اور پہن لے، قمیض اور پہن لے، اور پھٹے پرانے کپڑے ہوں، رو رہا ہے، شکل بنی ہوئی ہے، ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ کہتے ہیں بڑے متقی ہیں، قطعاً اس کا کوئی تعلق نہیں تقوا سے، دکھاوا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دنیاوی دکھاوا ہوتا ہے نا، مثال ہے ہم خود ہی زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ جو اس نے اچھے کپڑے پہنے نا یہ دکھاوے کے لیے پہنے ہیں، یہ بڑا گھر جو ہے نا یہ دکھاوے کا، یہ گاڑی تو لی دکھاوے کے لیے، ایک یہ دکھاوا ہوتا ہے دنیاوی چیزوں کا، ایک دکھاوا تقوے کا ہوتا ہے، نہیں نہیں ہم تو نہیں کرتے، نہیں ہم تو نہیں، یہ تو اور آپ بڑا بن رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو مار رہے ہیں، بالکل بیلنس طریقے سے رہیے، اللہ کے نبی نے اتنے مہنگے جبے بھی پہنے اور پیبند لگے ہوئے بھی پہنے، ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، نمبر ایک عزیمت کا راستہ ہے، سب کچھ ہے اللہ نے دیے، آپ کے پاس لاکھوں موجود ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس بت کے اوپر اپنے جسم پہ اتنا لگا دوں گا، میں نے کیا کرنا ہے، پکو اس کو ایسے کام میں ڈال دیتا ہوں جو میرے بعد بھی رہنا ہے، بہت اچھی بات ہے، سادگی بہترین ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سادگی جو ہے البزاز من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ، اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ ایک لاکھ کا زیور پہن سکتے ہیں، آپ نہیں پہنتے، آپ کی خوشی، نو پرابلم، بہت اچھی بات ہے، اتنا ہی آپ زیادہ کام کر لیں گے، لیکن اگر آپ کو اللہ نے دی ہے توفیق کہ آپ 2 لاکھ کا زیور پہنیں، بالکل پہنیے، کوئی ایک چوڑی نہیں پہنتا، کوئی 12 پہنتا ہے، کوئی تقوی سے اس کا تعلق نہیں، دیکھیے کہ اگلے نے نیت کیا کی ہے، اور ان چیزوں کو وہی لوگ اہمیت دیتے ہیں جو یا تو بہت تعریفیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت، کہاں سے لی کہاں سے لی، پیچھے ہم پڑھ چکے نا، لا تمدن عینی کا الا ما متعن بہ، یا تو بہت تعریفیں کرنے لگے کہاں سے لی، آنکھیں کھل گئیں اور پھاڑ پھاڑ کے آنکھیں دیکھ رہے ہیں، اور یا دوسرے لوگ جو ہر وقت اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی دل میں کسی چیز کی اہمیت ہوگی وہی اس کو زیادہ ڈسکس کرے گا نا، اسلام چاہتا ہے اس دنیا کو اتنا ڈسکس نہ کرو، کوئی اچھا کپڑا پہن رہا ہے، اچھا گھر ہے، اس کو اتنا نہ سر پہ چڑھا لو تعریفیں کے پل باندھ کے کہ وہ اور کرے، اور کسی نے بالکل عام سے کپڑے پہنے ہیں تو اس کو بالکل احساس نہ دلاؤ کہ تم کم کپڑے پہن کے آئے ہو، خوش ہو جاؤ، برکت کی دعا دو، اچھا کرو، ہاں اچھے طریقے سے، تھوڑی ضروری نہیں، اور قیمتی چیز اور خوبصورت چیز میں زمین آسمان کا فرق ہے، بعض لوگ انتہائی قیمتی چیز خرید کے آتے ہیں اور بندہ سوچتا ہے اس نے لیا کیا، خود ہی بول بول کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، چوائس ہی نہیں اچھی ہوتی، اتنے بڑے بڑے ڈیزائن لے کے آگے، اتنے جھٹکے رنگ لے کے آگے، آپ کہتے ہیں یہ میں نے 10,000 کا جوڑا خریدا ہے، آپ کہیں گے یہ تو 1,000 کا بھی نہیں لگ رہا، اور بس بڑا مناسب سا نپا تلا سا، کہیں سیل سے کہیں اچھا، وقت ضائع کیے بغیر مناسب سا لیتے ہیں، سلیقے سے پہنتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا ہے، اور بعض پہلی دفعہ پہنتے اور لگتا ہے کہ یہ کوئی 4 دفعہ پہنا ہوگا پہلے، اور بعض 100ویں دفعہ پہنے گا لگتا ہے پہلی دفعہ پہنے، میں اور آپ کہاں کسی کو جج کریں گے، تو اب 15 پارے کے قریب پہنچنے تک ہمارا معیار بالکل سیم ہو جانا چاہیے، بس آپ دیکھیے پریکٹیکل بات کروں گی تاکہ آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو جائے، آپ سب پچھلے 8-10 مہینے سے جب سے یہ کلاسز لے رہے ہیں، کیا آپ کے بازار کے چکر خود ہی کم ہوئے، بوتیکس کے کم ہوئے، وہ کیسے خوش ہوں گے پھر آپ کے قرآن پڑھنے پہ، उनको वो तो एक आंख नहीं भाएंगे हमारे इस काम को कि हमारा बुटीक कम ज्वेलर्स के कम हुए। आप देखिए ये तो नेचुरल है, जिसको सामने चमकती हुई चीज दिख रही है वो कहते हैं हु केयर्स। मैं कभी भी, अब तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास हैं गिनती के कपड़े और मैं इस पर बड़ी खुश हूँ, लेकिन जब मैं नई नई अमेरिका आई, शादी भी हुई थी, कपड़े थे, मैं अपनी अलमारी खोल के देखती थी, मैं कहती थी इन चीथड़ों पे अल्लाह पूछेगा, एक एक कपड़े को मैं कहती थी तेरा अल्लाह हिसाब लेगा, तू तो कुछ नहीं, मुझे तो नहीं बड़े लगते। बीसियों बार मैंने उन कपड़ों में दर्स भी दिए पड़े, मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपनी शादी के जोड़े में भी दर्स दिए। मैंने कभी नहीं इस चीज़ को बुरा समझा कि मैं ये कपड़े पहन के दर्स दे रही हूँ, लोग कहेंगे ये कैसा दीन है भाई, कहते रहे मुझे क्या, मैं क्यों झूठा तकवा बनाऊँ, क्या मेरे ये जोड़े सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। हम जब ये सोचते नहीं कपड़े नहीं मुनासिब पहने हुए, यानी ये शादी वाले हैं और दर्स पे जा रहे हैं तो हम ज़रा घरे जाने दें हमें, हम सादा सफ़ेद लट्ठे का जोड़ा पहन के आते हैं, ये नहीं इस्लाम का मिजाज, जो है और कभी कुछ भी नहीं। इतने पुराने पहने, नाइट सूट पहना हुआ तो पहना हुआ, हु केयर्स, इनको अहमियत छोड़ दे। और यकीन करें कि जिसको मैं खुद कभी अल्लाह ताला से कहती हूँ, जन्नत की आयतें जब आती हैं पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जब दिल से सारे अरमान निकल जाते हैं दुनिया की चीज़ों के, फिर आप जन्नत की आस दिलाते हैं, कि फिर जन्नत का भी सोच के बंदा ये थोड़ी कहता है कि अच्छे कपड़े लेंगे, ये भी वही सोच रहे होते हैं कि अच्छा कोई हदीस सुना दो कि इसके बदले में जन्नत में क्या मिलेगा। जब दिल में कपड़ों जेवरों की मोहब्बत है, बंदा तो जन्नत को भी फिर चाहता है तो अल्लाह के लिए चाहता है, अल्लाह वहाँ कुरान होगा, अल्लाह वहाँ दीन की महफिलें होंगी, चलो अच्छे कपड़े भी पहन लेंगे, कोई हरज की बात नहीं, दे दे ले लेंगे। यानी जन्नत को भी आप इसलिए सोचें कि वहाँ जेवर पहनने, तो आप यहीं पहन लें हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, अब आगे ये सारी बातें आपको फ़ायदा देंगी अगर आपने दिल से सुन ली हैं, क्योंकि इस पर थोड़ी थोड़ी बात आगे जाके होती रहेगी। तिलावत सुन लेते
हैं। نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون